أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نیکی کا ایک اور موقع اللہ اور اس کے رسولوں سے متعلقات باتوں کا ایک اور موقع ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے آئیے آج ہم و ابراہیم الذی وفا اس سیریز کا اگلا سیشن لیتے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہوگا ابراہیم علیہ السلام بحثیت مبلغ جاری رہے گا تا ابد اسوہ خلیل کا اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک بہت بڑا خوبصورت موضوع ہم دیکھیں گے جب ہم نے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں اتنا کچھ جان لیا تو پھر ضروری ہے کہ ہم آگے چلنے سے پہلے جو ایمان کی دوسری شقیں ہیں اور عمل اور ملت ابراہیمی کے کچھ اور تقاضے ہم تھوڑا سا تبلیغ کے بارے میں بات کریں کیونکہ امت مسلمہ امت تبلیغ ہے ہم امت دعویٰ بھی ہیں اور ام مدعو بھی ہیں یعنی انبیاء کرام میں سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور آج ہم اسی مشن کو آگے لے کر انسانیت تک پھیلانے کے مجاز ہیں الحمبردار ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کیونکہ ہمارے دین کا بنیادی پلر دعوت اللہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بالکل آغاز میں جو پیغام دیا گیا وہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کا تھا کہ رات کو چادر لپیٹ کر سونے والے تھوڑا سا کچھ وقت اٹھئے اب سونے کے دن گئے اور اپنے رب کو راتوں کی گھڑیوں میں یاد کیجئے اللہ کے نبی تو پہلے ہی غار حرا میں اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے عادی تھے جب اس کے اوپر تیار ہوئے تو اگلا حکم یا ایھا المدثر قم فانذر کا آ گیا کہ راتوں کو قیام اللیل ہے تو دن کو قیام النہار ہے فرق اتنا ہے کہ رات کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کے قریب ہونا ہے اور دن کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے قم فانذر حق رسالت ادا کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور اللہ کی بات کو سامنے رکھنا ہے اور پھر اللہ کے نبی ایسے کھڑے ہوئے کہ شاید 23 سال تک کھڑے ہی رہے پھر آندھیاں آئیں طوفان آئے مکہ سے طائف طائف سے مدینہ اور اس کے بعد کے سفر جاری رہے لیکن اللہ نے آپ سے یہ کام لیا اور دنیا سے جانے سے پہلے ایک پیغام امت کو دے گئے حجت الوداع کے موقع پہ سب کو یہ باتیں معلوم ہیں صرف میں آپ کو اس موضوع کی اہمیت سے متعارف کروانا چاہتی ہوں اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت دعوت اللہ تھی دکھ افسوس اور حسرت اور پشیمانی کے ساتھ کہوں گی کہ آج امت مسلمہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ گئی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو دلیل بنا کر امت کے ٹکڑے کیے گئے اور کسی نے صرف نماز کی سنتوں کو بحث بنایا کسی نے چہرے مہرے کی سنت پہ بات کی لیکن جو ایک مستقل سنت تھی کہ دعوت اللہ اس کو بھول گئے کیونکہ ہمارا دین آدھا اپنے لیے ہے اور آدھا دوسروں کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیشنز میں ایک میں نے آپ کے سامنے وہ تقاضے رکھ دیے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تقاضا ہم مسلمانوں سے جو کیا ہے وہ خود اللہ کا بندہ بننے کا ہے یعنی پیغام بندگی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے جب انسان خود اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور بیچ میں ہم نے دیکھ لیا بڑی ڈیٹیل سے الحمدللہ کیا آمنت باللہ کہنے کے بعد کیا شخصیت ہے اس سے بالکل پچھلا سیشن کہ جس میں انسان ٹوٹ کے رہ گیا کہ میں اللہ سے کیسے اپنے آپ کو جوڑوں جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر دوسروں کو اس کی طرف نہ بلائے یا ایسے کہ آپ بڑی مزے کی آئس کریم کھا لیں تو پھر دل چاہتا ہے سبھی کا ہے बहुत कीमती अच्छी सस्ती चीज सेल में मिल गई, दिल चाहता है सभी ले ले। तो जब आमंत बिल्लाह की बात समझ आती है और तौहीद और शिर्क का फर्क समझ आ जाता है, तो दिल चाहता है कि फिर रब की तरफ पुकारा जाए। तो फिर दूसरा तकाजा जो किताब का, कुरान का और अल्लाह का उम्मत मुस्लिमा से है, वो क्या है? वह कजालिका जाल ना कुम उम्मतम वसता। अब तुम अल्लाह से जुड़ गए हो, अब दूसरों को जोड़ो। तुम्हें कुर्बानी की रूह समझ आ गई तो अब दूसरों को समझाओ। और फिर उसके बाद तीसरा जाकर कहीं आएगा निफाज़े शरीया का। तो इस वक्त ये सारी बातें अल्लाह के ताल्लुक के बाद इस सोच के साथ सुनिएगा कि क्या मैं और आप इस मौजू को जानते हैं? कितना मारूफ लफ्ज़ है हमारे यहाँ, तबलीग, मुबल्लिग और दाई, दर्स वाले, वाज, बहुत मारूफ है अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में। मरकज़ अलदावा और इसी तरह से नशरो इशाअत, तबलीग, बातें तो बहुत हैं। लेकिन आज हमारी तबलीग का नतीजा क्या है? आज पूरी इंसानियत जिस नासूर पे पहुंच गई, उसके जिम्मेदारों में एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आज का मुसलमान है। माजरत के साथ, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं ये बात करूं कि हम सब आज उम्मत मुस्लिमा होने का ये दूसरा तकाजा और सीरते इब्राहिमी को जानने का ये दूसरा तकाजा पूरा नहीं कर पा रहे। कुछ पार्शली कर भी ले ना, तो फिर दुनिया जीने नहीं देती। कुछ पूरा करने की कोशिशों में लग जाए तो लोग उनको तबलीगी कहते हैं, और कोई कुछ और, कोई कुछ और, और कुछ ने तो पूरी छुट्टी ले ली, कुछ ने हाफ छुट्टी ली। आधी छुट्टी होती थी हमारे यहाँ, आज आधी छुट्टी है, 1 घंटे की छुट्टी। कुछ ने इसको पार्ट टाइम रखा, कुछ ने इसको वीकेंड के काम कर दिया, किसी ने इसको रमजान का काम बना लिया। हालांकि अगर आप मेरे दिल से पूछिए तो सबसे बड़ा काम जो अपने फराइज को पूरा करने और खुद अपने अकायद और अपने नजरियात को वाजे करने के बाद है, वो ये है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो आज हम इंशाल्लाह सीरत इब्राहिमी के तकाजों में से एक तकाजा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हम इस पे बात करते हुए देखेंगे कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तबलीग की। और आपको इंशाल्लाह इसमें तकरीबन 8 से 10 पॉइंट्स दूंगी कि जो आज मुसलमान अगर अपने ऊपर लेकर रखेगा तो उसको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ क्या है, एक मुबल्लिग होने के नाते सीरत इब्राहिमी में आपके मेरे लिए अमल की, और वो है पहले इल्म बाद में तबलीग। पहले इल्म हासिल कीजिए, बाद में तबलीग कीजिए। सही बुखारी की रिवायत 3009 में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, फवल्लाही, बस अल्लाह की कसम, यानी कसम जब अल्लाह के नबी खाकर कहते हैं तो बात कितनी बड़ी होती है क्या, कि अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए से एक शख्स को भी इस्लाम अता कर दे तो ये तुम्हारे हक में सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। सही बुखारी की रिवायत 3009, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी की वो वसीयत है जो आपने उनको खैबर की फतह की तरफ रुखसत करते हुए फरमाई। तो मेरा आपका और ख़ास तौर पर मैं अपने ऊपर और अपने साथियों के साथ यही कहूँगी कि यही मकसद है आज की इस बात का, कि शायद इस एक बात से किसी और को फ़ायदा हो जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वो बात उनको समझ आ चुकी थी। हदायतों के नंबर आप इस सेशन में भी नोट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये पूरी सीरीज सुन लेंगे तो पूरे कुरान पाक की आयात अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक वाइज आपके पास जमा हो चुकी होंगी। मरियम 43, या बती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी मालम याती का फत्तबेनी अहदी का सिरातम सवीया। ए मेरे अब्बा जान, बिलाशुबा मेरे पास वो इल्म आ चुका है। ये है वो जुमला, इसको बस नोट कर लें। तो सबसे पहले दाई खुद इल्म लेगा। जो आपके पास नहीं आया तो आप मेरी इत्तबा करें, मैं तो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। तो आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग खुद दीन सीखे बगैर दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। अभी दीन की पूरी रूह समझ नहीं आई, और वो लोगों को जब बुलाएंगे, कुछ ने नुकसान क्या किया कि कुछ ने सिर्फ अकीदे को टच किया, कुछ ने सिर्फ किसी एक इबादत को लिया, किसी ने अखलाक को सारा दीन कह दिया, किसी ने हकूक अल इबाद का नाम लिया, और वो टुकड़ों टुकड़ों वाला दीन दिया। माजरत के साथ हमारी मिसाल तो इंग्लिश की उस कहानी की तरह है कि 9 अंधे, अगर आपने भी किसी इंग्लिश की बुक में पढ़ा हो तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि किसी शहर में 9 अंधे लोग थे, ब्लाइंड, खबर मिली कि शहर में हाथी आया है। अब लोगों ने हाथी कभी नहीं देखा था, तो बड़े सब निकले कि देखें हाथी क्या और उसका तमाशा देखते हैं। इन्होंने कहा हम भी चलते हैं। अब बेचारे क्या देखते, जाकर छूने लग गए। किसी का हाथ हाथी की दुम पे पड़ा, किसी का कान पे पड़ा, किसी का पेट पे पड़ा। वापिस आ गए, कहा सुनाओ भाई हाथी कैसा है। तो एक ने कहा कि हाथी ढोल की तरह, क्योंकि उसका हाथ पेट पे पड़ा। दूसरे ने कहा हाथी रस्सी की तरह, क्योंकि दुम पे हाथ पड़ा। तीसरे ने कहा कि वो तो पंखों की तरह, कान पे हाथ पड़ा। अब मुझे बताइए ये सब जो बात कह रहे हैं, क्या ये गलत है या ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि दे वर राइट पार्शली बट रॉन्ग कंप्लीटली, कंप्लीटली दे वर नॉट राइट बट बाय पार्ट देखा जाए तो वो राइट। क्या पता चला कि जिसको जो समझ आया वो उसको दीन बना गए। आज इस उम्मत के ऊपर जो बहुत ही बड़ी जबूहाली आई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, इस वजह से फिरकों में बटे, गिरोहों में बटे। उम्मत मुस्लिमा की वो डोरी जो तस्वी के दानों को लेकर एक बड़ी प्यारी उम्मत थी, जिसको अल्लाह के नबी ने सींचा था, जिसके लिए आप बदर के दिन भी परेशान थे कि अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से ये मोती जमा किए हैं, अगर आज इस्लाम दब गया तो इस दुनिया में तेरा कोई नाम नहीं लेगा। आपको पता था मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन आज हमने उस उम्मत की गिरा को खोल दिया। इस दर्द को महसूस कीजिए, कहीं फिरके जान नहीं छोड़ते, कहीं जमातें जान नहीं छोड़ती, कहीं मसलक जान नहीं छोड़ते, कहीं गिरोह साथ जान नहीं छोड़ते। और माजरत के साथ कि जैसे चार आइमे कराम के नाम पे शुरू में तो उम्मत चार लोगों में बटी थी ना, चार स्कूल ऑफ थॉट बने थे, वो स्कूल ऑफ थॉट थे, इट्स ओके, पर्सन्स नहीं थे। आज उसके 440 हिस्से हो गए। हर गिरोह, हर फर्द, हर टीचर, हर नाम, हर प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया और ये तड़प कम हो गई। नतीजा क्या हुआ? गंदगी उठाने वाली कंपनी हड़ताल करती है ना, तो सारे शहर में ताफुन और बदबू फैलती है। आज उम्मत मुस्लिमा जिनका काम बुनियादी तौर पर यह था पूरे माशरे की तत्हीर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआओं में एक दुआ थी जो आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि अल्लाह के नबी के लिए दुआएं मांगी थी, रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, तो उसमें क्या कहता है, वायु जखीहिम, तस्किया करेगा, सफाई सुथराई का काम करेगा। तो उम्मत मुस्लिमा का काम माशरे से गंदगी को साफ करना था, वो जिनसी गंदगी हो, वो अखलाकी गंदगी हो, वो अकायद की गंदगी हो, हम इन चीजों से दूर रहे और अपनी मर्जी का टुकड़ा लेकर कुल्लु हिस्बिम बिमा लदैहिम फरहून और फरहीन, हम खुशियां मनाने वाले हैं। जो दीन का हिस्सा मुझे थोड़ा सा समझ आए लेके चल पड़ी, मुझे कोई जरूरत नहीं पूरे दीन को लेकर जाने की, मुझे आई इतना समझ तो मैं ले गई। इसलिए आप देखिए आज उस्ताद ज्यादा हैं और शागिर्द थोड़े हैं। पहले एक एक उस्ताद के पास लाखों होते थे, हजरत अबू हुरैरा का हलका हजारों नहीं लाखों में था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के गिरोह में जहाँ उन्होंने किताब पढ़ाई अपनी, जो कोई बात करी 90,000 लोग होते थे। और आप सोचिए उस्ताद वो पंडाल में दूर बैठा और उसकी बात सुन के दूसरा फिर तीसरा करे, माइक तो नहीं थे, नेट भी नहीं थे, कोई लिंक्स नहीं थे, एक लिंक दे दो और सारी दुनिया सुन ले। एक महफिल में लाइव इतने लोग बैठे होते थे, उस्ताद से बात पीछे लोगों के जरिए जाती थी, एक सुनकर दो चार सफ़ों के बाद वो बोलता, जैसे जमात में कभी आपने देखा होगा मुकब्बिर होता है, और आखिर वाले के बाद जब बात पहुंचती तो 10 मिनट गुजर चुके होंगे ना। शौक था तो बात क्या पता चली कि सबसे पहले खुद इल्म लीजिए। दीन सिखाना हर बंदे का काम नहीं है, ना वो मुकल्लफ है। आप मास्टर्स के बगैर किसी को कॉलेज में ना घुसने दें वो कैसे लेक्चरर बने, और पीएचडी किए बगैर कोई प्रोफेसर बन जाए? तो आज जिसका जो दिल चाहे चार लफ्ज पढ़े, चार दिन पढ़े, एक दफा कुरान का हल्का सा दौर किया और कहते हमें आता है, और फिर चूंकि हमारी जमात है, हमारा गिरोह है, हमारा उन्हें भी करना है, और फिर हमारों के पास है ही ये, तो जो करना है। ये सब के लिए नई बातें नहीं है। तो सबसे पहली बात कि आप पहले इल्म लीजिए, बगैर इल्म के तबलीग करना जुर्म है। और आज बाज लोग तालीम देने लग जाते हैं बगैर कुरान पढ़े, और मैं कह सकती हूँ कि इल्म का सोर्स कुरान और सुन्ना। कुरान पढ़े बगैर, उसका लफ्ज ब लफ्ज सीने में डाले बगैर, उसके एक एक लफ्ज को जाने बगैर, नासिख और मनसूख का इल्म लिए बगैर, आप कुरान पाक के तावील खास का इल्म लिए बगैर, अगर आप कुरान सिखा रहे सीख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर ली। इसीलिए सूरत अलानाम की आयत 119 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन्ना कसीरल्लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, इसको हाईलाइट कीजिए। हमारे यहाँ नीम हकीम वाली मिसाल तो बहुत मारूफ है। मजीद पुख्ता इल्म लीजिए और पुख्ता इल्म के साथ लोगों को जोड़ दीजिए। हम सिर्फ इसलिए पुख्ता इल्म लोगों को नहीं देते कि लोग फिर मेरे पास नहीं आएंगे और मेरी क्लास नहीं चलेगी, तो तेरी मेरी में तो यही होगा। और अगर वाकई वो तड़प है जो नबी ने दे दी थी, तो फिर उसके लिए इंसान को अपनी अना की कुर्बानी देनी पड़ती है। बाज़ लोग मौजू और मन घड़त रिवायात पेश करते हैं, पूछा जाए क्यों, कहते कोई बात नहीं ना, लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो भाई अल्लाह के नबी के सहाबा के मन घड़त रिवायात को सुनकर मुसलमान हुए थे? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सही इल्म लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन फल यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले बस वो अपना ठिकाना दोजख में समझे। और जो रह गए थोड़ा सा लिए दिए हुए लोग दूसरों को लेके चले, अवॉइड कीजिए। बस इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि कुरान आपको ये हुक्म देता है। अलनाम 116, वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लू कन सबीलिल्लाह। और जमीन में अक्सर लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनकी मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से गुमराह कर दें। वो महज बेअसल ख्यालात की इत्तबा करने वाले लोग हैं और बिल्कुल कयासी बातें करते हैं। कयास होता है अंदाज़ा, गैस वर्क। इतना अहम काम और गैस लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, आई थिंक, मुआशरा ये कहता, लोग ये कहते, इस तरह की बातें और ये वो बातें करना। तो याद रखिए कि ये आपके मेरे घर की पैदावार नहीं है। अल्लाह से ये दुआ करके बैठने वाली जगह, जान कांप रही होती है, सर पे तलवार लटकी होती है, एक टंग स्लिप आगे चली जाती, हजारों नहीं अब तो लाखों में चली जाती, कल करोड़ों में चली जाएगी। लेकिन आपको मुझे ज़रूरत है, 10 दफ़ा सोचें फिर बात करें, और उसके लिए इल्म लीजिए। तो मुहक्किक उलमा से लीजिए। बाकी मुबल्लिगीन बहुत से हो सकते हैं, दूसरों को बुलाना, मोटिवेशन देना, हल्का फुल्का उनका जहन साजी करना, लेकिन मियार ना सेट कर दीजिए ऐसे उस्तादों को कि लोग इसी से अपने आप को कह दें हम पढ़ चुके हैं। 10-10, 15-15 साल में जो एक कुरान क्लास पूरी होती है उसके बाद भी नतीजा जीरो निकलता है। बहुत हुआ तो 10% अमल आया, क्योंकि मेरे उस्ताद के पास भी इतना ही इल्म था और अमल भी इतना ही था। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, याद करें पिछले सेशन की बात, कि मैंने तो कल्चर के मुताबिक शादी की है, यानी इस्लामी शादी नहीं कि मैंने कल्चर वाली शादी की है। तो जब उस्ताद ये बातें बोलेंगे तो लोग तो शुक्र करेंगे ऐसे उस्ताद मिले ताकि हमारी जान छूटे। अल्लाह ताला आपसे मुझसे सही बात कहलवाए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी यूसुफ की आयत 108 में फरमाते हैं अपने बारे में, कुल हाजा सबीली अदू इल्लाही अला बसीरतिन अना व मन इत्तबातनी। आप कह दीजिए यही मेरा तरीक है कि मैं और मेरी तबाह करने वाले अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ दावत देते हैं। तो खुलासा क्या निकला कि बसीरत से बात कीजिए, दिल से बात कीजिए। ये किसी मुल्क में रहते हुए आप उसके कानून को अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। आप अगर यूएई में हैं, यूके में हैं, मैं नॉर्वे में हूँ, मैं पेरिस में हूँ, आज कहाँ हूँ, किधर हूँ, हर मुल्क का एक कानून, एक जाब्ता। खड़ा हो जाए जाकर कोई पुलिसमैन बनकर के, इधर खड़े हो जाओ, इधर स्टॉप साइन है, इधर रोड बंद है, तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो आप और मैं दीन पे रहते हुए बहुत मुख्तात रहे। दूसरा बहुत प्यारा उसवा हजरत इब्राहिम का जो हमें दिखता है, इल्म के मुताबिक अमल करना, पहले खुद अमल की कोशिश और हत्तुल बसा इल्म पे अमल, फिर बात की। और इसकी दलील बकरा 131, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब कभी भी उसके रब ने उससे कहा कि फरमा बरदार हो जाओ, बी ओबीडियंट, तो कहने लगे कि बस मैं जहानों के रब के लिए फरमा बरदार हो गया, अल्लाह मुझे आपको ऐसा मुस्लिम कर दे जैसे जमीन और आसमान है, सूरज और चांद है। मुसलमान ऐसा होता है, सूरज चांद सितारों की मर्जी नहीं है, लेकिन मोमिन मर्जी होते हुए भी ऐसे सरेंडर कर देता है कि कोई रिजेंटमेंट नहीं। अप्स डाउन सेट स्टैंड पीटी कभी बचपन में कभी स्कूलों में की होगी, देखी होगी, बस वो जहन मिले, हैंड्स अप हैंड्स अप, हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन। जो उस्ताद खुद अमल करते हैं उन्हीं की बात में असर होता है। जो खुद फरमा बरदार होते हैं वही दूसरों को फरमा बरदार बनने का पूरा यकीन रखते हैं, वरना लोग कहते हैं हाँ नहीं अमल तो नहीं होगा, आज के दौर में तो नहीं होता, वो नहीं होता। फिर आप देखिए कि इब्राहिम ने तो अपनी औलाद को भी इसी का हुक्म दिया था। अल बकरा 132, वबस्सा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन लकुमुद्दीन फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी मरते दम तक मुसलमान रहना, इब्राहिम और याकूब के अपने बेटों को ये नसीहत थी। तो आपके मेरे लिए भी यही अमल है। रहनुमा असूल लीजिए کہ دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے خود بھی عمل کی پوری کوشش کیجیے اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیے، ورنہ وہ فارسی کا شعر تو ہے نا کہ دیگراں را نصیحت خود میاں فضیحت، اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں سورہ صف آیت 23 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ادھر رکیے، اللہ نے پکار لیا اور کہا اگر ایمان والے نہیں ہو تو جاؤ پھر یہ کال تمہارے لیے نہیں، موج کرو، میرا پیغام صرف ان کے لیے جو سن کے ماننے کی نیت سے سنتے ہیں، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تمہارا دوسروں کو وہ بات کہنا جو تم خود نہیں کرتے اللہ کو سخت ناپسند ہے. آج ہماری تبلیغ میں اثر کم ہو گیا، کیونکہ جب خوشی آتی ہے تو ہم بھدکتے سارے معاشرے کی طرح، جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے رسم و رواج اور بچوں کے سسرال کے نام پہ، جب گھر لینے کی باری ہوتی ہے ہم بھی اتنا ہی مجبور ہیں سود پہ گھر لینے پہ جتنا سارا معاشرہ، اور آج کا مسلمان اتنا ہی مجبور ہے اللہ کی نافرمانی پہ جتنا غیر مسلم ہے، تو اللہ کو ایسے مسلمانوں کی پھر کوئی زیادہ فکر نہیں ہے. اور سورۃ بقرہ 44، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو سول سرچنگ کوسچن اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا بھلا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ بات شریعت سے مت پوچھو، عقل سے پوچھو کہ جو بات دوسروں کو کہتے ہو خود اس پہ عمل کی کوشش کرو. تیسرا نقطہ لیجئے گا، خلیل اللہ کے اسوے سے تبلیغ کا آغاز گھر سے کیجئے. آپ نے جو ہی میدان تبلیغ میں قدم رکھا تو گھر سے آغاز کیا. دلیل مریم 41 سے 45، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن اسیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابراہیم اپنے باپ کو سب سے پہلے پکارتے ہیں، سچے تھے نا، اور پیار یا بتی محبت کا انداز، تبلیغ میں محبت فاتح عالم، سخت زبانوں سے بات دلوں میں نہیں جاتی، سخت زمین میں آپ بیج بھی ڈالیں گے نا تو بیج ضائع ہو جائے گا، سخت جگہ پہ انگلی کھبوئیں گے آپ کی انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں اپنے باپ سے بات شروع کی، ان آیات کے ترجمے سے آپ آگاہ ہیں. دوسرا مقام لیجیے، الانعام 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر اتتخذ اصناما آلہة انی اراک وقومک فی ضلال مبین. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو یہ ہے ابراہیم جنہوں نے تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا. افسوس کی بات ہے، ذرا سا اپنے عمل کو بھی دیکھیں، تعجب کی بات ہے، وہ مبلغین، ایون وہ استاد اور وہ تبلیغ کرنے والے زندگی بھر دوسروں کو پڑھتے پڑھاتے سناتے رہ جاتے مگر اپنے گھر کی دینی بے راہ روی اور اخلاقی زبوں حالی پر توجہ نہیں دیتے. بیٹیاں کیا پہنتی، بیٹے کیا کرتے، بھائی بہنوں کے گھروں میں کیا ہے، ان کی خوشی غم کے بالکل بھی نہیں بات کرو، کہتے ہیں کون برا بنے، کیوں خاندان کو چھوڑیں، کیوں اس کو کریں اور ساری دنیا آپ سے فائدہ اٹھا لے اور چراغ تلے اندھیرا رہے. دیکھیں آپ کہیں اور بچے اور بہن بھائی نہ مانیں تو اور بات ہے، آپ مبرہ ہیں. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، لیکن آپ تو بچ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، جو ان کا باپ تھا وہ تو آج ہمارے آپ کے باپ تھوڑی تھے ایسے، وہ بادشاہت اور وزارت تھوڑی تھی ان کے پاس، ہمارے پاس آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو پڑھ چکے اس سیریز میں، کیسے وزیر خزانہ کے بیٹے تھے لیکن نہیں ڈرے، نہیں دبکے. اور گھروں کے اندر جب تک دین نہیں آئے گا باہر اس کا اثر نہیں آئے گا. سورۃ تحریم آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. واحد مقام ہے قرآن پاک کا جہاں ایمان والوں کو आग से खुद को बचाने की दावत दी। हम तो हमेशा कहते हैं उद्दत लिल काफिरीन, ये काफिरों के लिए बनी है। हाँ बनी तो उनके लिए थी, पर कुछ मुसलमानों को शौक है, भाग भाग के फिसल फिसल के आग में गिरते हैं पतंगों की तरह। ख्वाहिशों के पतंगे इंसान को आग में गिरा देते हैं। चौथी बात लीजिए, फोर्थ पॉइंट, बिरादरी और इलाके में तबलीग। हमारा सबसे बड़ा बुत खानदान का होता है, हम उनके आगे बात नहीं कर पाते। जबकि इब्राहिम ने क्या किया, आयत 51 से 54 अलंबिया, वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन कब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इस काल ली अबीही व कौमिही मा हाज़िहित तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो बिला शुबा हमने शुरू से रुश्द से नवाजा और हम इनके हाल अहवाल से खूब वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मजावर बने बैठे हो क्या हैं, अगली आयत में उनकी कौम का जवाब है, तो क्या पता चला, कौम को पुकारा, खानदान को चैलेंज किया। बहुत बड़ा बुत है ये हमारे लिए खानदान, और उसी के लिए ज्यादा गुनाह करते हैं। सूरह साफ़ात आयत 85 से 87 नोट कर लीजिए। दूसरा मुकाम, इस काल अली अबी ही व कौमी ही माजा ताबुदून आ इफकन आलिहतन दून अल्लाह ही तुरीदून फमा जन्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। उन्होंने बाप और कौम से पूछा, तुम क्या पूज रहे हो, क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद पसंद करते हो, रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांग रहे हो, तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में कोई डाउट है। तीसरा मुकाम लीजिए इस बारे में, सूरत अश्शूरा आयत 70 से 82 को जाके देखिएगा। इस काल अली अबी ही व कौमी ही मा ताबुदून कालू नाबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन। कहने लगे अपने बाप और कौम से, तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम बुतों की इबादत करते हैं और इसके मजावर बने हुए। आपने फरमाया, क्या ये तुम्हारी बात सुनते भी हैं जब तुम इनको पुकारते हो, या तुम्हें नफा नुकसान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने आबा को ऐसा करते हुए पाया। आपने फरमाया, क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि जिनकी तुम और तुम्हारे पहले आबा इबादत करते थे, वो तो मेरे दुश्मन है मगर अल्लाह परवरदिगार आलम का कि जिसने मुझे पैदा फरमाया और मेरी रहनुमाई करता है, वो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है, और वही मुझे जिंदा करता है और मारता है, और जिस जात पर मुझे उम्मीद है कि वो क़यामत के दिन मेरे गुनाह मुआफ कर देगा। तो इन सारी आयात से पता चला कि आपने घर के बाद अपनी कौम और इलाके में तबलीग की। अल अक्रबु मिन अल अक्रब का असूल याद रखिए तबलीग में। अल्लाह के नबी के भी इब्तदाई दौर की आयात में एक आयत वानजिर अशीरतक अल अक्रबीन थी, सूरह शुरा की आयत है ये, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को आगाह कीजिए। तभी तो फिर आपने सबको जमा किया और कोहे सफा पे गए और इसी तरह अपने घर खाने पे बुलाया। तो तबलीग का हक अपने खानदान, कजन, सहेलियां, इन तक का भी है कि आप उनको भी अच्छी बात कीजिए। अपने अपने इलाकों में रोशनी के चिराग बनिए, और चिराग जलते जाएंगे और दिए से दिया चलते रहेगा। इस तरीके से ये कुरान का नूर घरों में, दिलों में, खानदानों में फैल जाए कि हमारी जिंदगियों के अंधेरे और डिप्रेशन के और गमों के दूर हो जाएं, और हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, बचपन से सुनी पड़ी दुआ कबूल हो जाए। अपने आप को अपनी जगह पे चिराग बनाइए। यही पैगाम दिन रात है, अल्लाह हमें इसके ऊपर कायम रखे। और इसी तरह से सूरह तौबा की आयत 122 में आता है, वली युनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। इन्हें चाहिए कि इल्म हासिल करने के बाद वापस जाकर अपनी कौम को डराएं ताकि वो डर जाएं। तो अल्लाह करे हम मेन सोर्सेज से जुड़ें, बुनियादी कोर्सेज करें, और जब अपने अंदर इल्म के बाद कॉम्पिटेंसी पालें, फिर टीचर ट्रेनिंग हो जाए, इल्म पुख्ता हो जाए, फिर अपने अपने इलाकों में चिराग बने, फिर देखिए कैसे ये इल्म फैलता है। अकेले चले थे लोग, मिलते गए और काफिला बनता गया, ये मिसाल बड़ी छोटी हो जाती है जब आप सही तरीके को इस्तेमाल करते हैं इल्म के रास्ते में। पांचवा अमल लीजिए, मुबल्लिग अक्ली दलाइल से तबलीग को मौसर बनाए। यानी सिर्फ किताबें पढ़ पढ़कर ना उस्ताद बढ़ाएं, किताबें पढ़ाने वाले बहुत हैं, किताब खुद पढ़ लीजिए, क्या मुश्किल है। लेकिन उस्ताद वो होता है जो दिमाग को टच कर दे, जिसकी बात से आपका दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए, उसको उस्ताद बना ले। और वो बात के उस्ताद कहते किसको है, लोग क्या कहते हैं, आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, जो इल्म दे, नहीं, इल्म तो किताब देती है। आज एक लिंक ले लीजिए, जाइए घंटों सुनी है, घंटों किताबें पढ़ी है। लिखिए उस्ताद वो है जिसके सामने बैठकर आपको अपना इल्म थोड़ा लगे, उसको उस्ताद कहते हैं। सारी उम्र ना उस शख्स को छोड़ गई है जिसकी बात सुनकर आपको हमेशा कोई नई बात मिले। लोग कहते हैं एक ही उस्ताद से सुनते रहे तो क्या हुआ, देखिए बात क्या है। आप कहते हैं एक ही माँ बाप की बात मानते रहे सारी उम्र, आपको नए माँ बाप दे दो ना हमें। तो याद रखिए ये रूह के रिश्ते होते हैं, ये अंदर अपनी जड़ें बनाते हैं। तो जब तक दरख्त की तरह उस्ताद भी आपको फल देता रहे, उसका साथ कभी ना छोड़े, वो जिस तरतीब से आपको देगा वो बिल्कुल नेचुरल होगी। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का असूल, पहले प्राइमरी की, फिर मिडिल किया, फिर मैट्रिक हुआ, फिर FA, फिर BA, फिर MA, और आप जगह बदलते रहे, कभी इधर जाके बच्चे को पढ़ा ले, दूसरे स्कूल में डाल दे, तो बच्चे सेट ही नहीं होते। आज माजरत के साथ इल्म का दौर दौरा तो बहुत है, लेकिन लुक बिजी डू नथिंग है, बुनियादें कमजोर और इधर उधर से चीजें लेंगे, एंड पे फिर वो आखिरी हवा वाला एक इल्म मिल जाता है जिसकी बात आसान लगी वो ले ली। तो दलाइल से बात कीजिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तबलीग बिल्कुल ऐसी थी, दिल झंझोड़ दें। और उस्ताद वो भी होता है जो इल्म की भूख देता है, उस्ताद वो भी होता है जो मोटिवेशन देता है, उस्ताद वो भी होता है जो आपको हौसला देता है, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम, चलो। और दलाइल ले लीजिए ताकि आप इस चीज को समझ जाएं। खास तौर पे आप देखिए कि हजरत इब्राहिम का स्टाइल था डे टू डे लाइफ की मिसालें, जिंदगी के रोज मेरा बातें, रोटी चावल, हम खवातीन है ना चूल्हा चौंका, इसकी मिसालों से औरतों को जो बात समझ आती है ना, वो उनको रॉ साकिन और मीम साकिन के रूल से नहीं आती, उनको नासिख और मनसूख से ये बातें नहीं समझ आएंगी, और उनको तवील खास और तवील अव्वल और उनको फलां मोटी मोटी अरबिक टर्मिनोलॉजी से बात नहीं समझ आएगी। हाँ, आपके इल्म का शोहरा तो आ जाएगा, उनका दिल तो मशहूर होगा, वो तो बेचारे पहाड़ में दबे होंगे, उससे ज्यादा आपके इल्म के जोश में दबे होंगे कि कितना पढ़ा लिखा उस्ताद है, पर मिला क्या। आप गोश्त का पूरा बकरा भून के सामने रख दें मेहमान के, सख्त इतना है कि वो खा ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा वो बकरा, तो क्या फायदा। वो कहेगा तो सही कि आपने बकरा रखा है मेरे आगे भून के, खाया कितना उसने, वो तो छुरी से ना टूटे, दांतों से कहाँ टूटे। आज ये होता है, हम बड़ी बड़ी बातें करके लोगों के लिए नाकाबिले तस्खीर बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन दिल में नहीं उतरती बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज ऐसा नहीं था, और इसकी दलील में आप जान गए होंगे अल अनाम 76 से 79 का वो हिस्सा जो सभी को ऑलमोस्ट आता है। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रा कौकबन काला हाज़ा रब्बी फलम्मा फला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, और इससे आगे चांद और सूरज तीनों आसमानों में थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब या खुदा को जमीन पे नहीं ढूंढा, और वो भी खुदा ना खासा कब्रों में सोए हुए लोगों को जाकर खुदाई के दर्जे पे फाइज करना, आसमानों में देकर कभी सूरज पे गौर कराया, कभी चांद पे, कभी सितारों पे। तो उस्ताद को तदब्बुरुल कुरान के साथ तदब्बुरुल कायनात भी करवाना चाहिए। तो दुनिया में जीना सिखाइए उस शागिर्दों को, डे टू डे लाइफ में चाट बनाते हुए रब को कैसे याद करना है, भिंडी पकाते हुए कैसे याद करना है, प्याज काटते हुए कैसे याद करना है। तो ये स्टाइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। हम रोज सूरज चांद सितारे देखते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। बुतों की पुजारी कौम को समझाने का वक्त आया तो बेबसी को साबित कर दिया कि देखो ये सूरज भी गया चांद भी गया, ये खुदा कैसे होंगे। और इसी तरह दूसरा मुकाम नोट कीजिएगा अलंबिया 58 से 67, इब्राहिम का तस्करा फजअलहुम जुजाजन इल्ला कबीर अल्लाहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत थे उनके टुकड़े टुकड़े किए और एक बड़े को छोड़ दिया ताकि उसी की तरफ लौट सके। वाकया आपको याद है, इसलिए मैं, वक्त कम है इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही। तो इब्राहिम ने हाथ से वो सारा मामला करके बुतों को तोड़ा ताकि बुतों की बेबसी लोगों को दिखा सके, और तारीख में से वाकयात मौजूद है। अबू तलहा रजी अल्लाह अनहु का कबूल इस्लाम देखिए, अमर बिन जमूह का कबूल इस्लाम देखिए। अपने बुत को जब मट्टी में कीचड़ में लुथड़ा पुथड़ा देखा तो उसके दिल में थोड़ा सा सुराख हुआ, फिर अगले दिन देखा तो वो और गंदे हाल में, और तीसरे दिन जब कुत्ते के गले में उसको रस्सी की ऐसा बंधा देखा तो कहा तू खुदा होता तो खुद को बचा लेता। ये अंदाज भी मौसर अंदाज होता है, तो क्या पता चला कि अगले के शऊर को बेदार करे मुबल्लिग, अना को नहीं जमीर को बेदार करे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। तो कह लीजिए कि लाजवाब हो जाने वाला अंदाज होना चाहिए मुबल्लिग का। एक और वाक्य ले लीजिए सूरह बकरा आयत 258, अलम तर इल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बी ही, नमरूद वाला वाक्य मारूफ है, पीछे सीरत में हम सुन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने नहीं देखा कि जिसने इब्राहिम और इससे उसके रब के बारे में झगड़ा किया, क्यों किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसको बादशाहत दी थी। तो تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو مشرق سے اور مغرب سے لانے کی بات کی اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے کی بات کی. تو یہاں کیا پتہ چلا؟ خلاصہ نکلا کہ ہمیں ایسی باتیں پیش کرنی چاہیے جس سے اگلے کے اوپر دین کا سحر طاری ہو, اگلے کو دین کی عزت محسوس ہو.